गुरुवार शाम को और शुक्रवार सुबह और शुक्रवार शाम, ऐसे चार पांच प्रवचन हैं जो सातवें स्कंद से अलग अलग भक्त लोग बताएंगे नरसिंह लीला के संबंध में। इसलिए हम भगवान नरसिंह देव को प्रार्थना करना चाहेंगे शुरुआत में, सब लोग पीछे दोहराइए। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतो मुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्। श्री जय नरसिंह श्री नरसिंह जय जय नरसिंह। प्रह्लादेश जय पद्मा मुख पद्मा भृंगा। हे भगवान नरसिंह देव को संबोधित करते हुए प्रार्थना है। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम। तो भगवान नरसिंह देव भगवान श्री कृष्ण के क्रोध का एक मूर्तिमान स्वरूप है। साधारणतः लोग सोचते हैं आध्यात्म का मतलब है इस तरह के जो षड रिपु होते हैं, क्रोध काम लोभ मोह ये सब चीज, इससे आदमी को रहित होना चाहिए। लेकिन इधर हम देखते हैं भगवान नरसिंह देव कैसे वो क्रोध का प्रदर्शन करते हैं। ये एक भक्त थे जिनको बहुत क्रोध आता था, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को बोला कि मैं क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। प्रभुपाद ने बोला तुम नरसिंह देव का दर्शन करते रहो हमेशा, क्योंकि उनको देखोगे कितने जितने बड़े क्रोधालु हैं, तुम्हारा क्रोध बहुत छोटा अंश मात्र है, तुम्हारा क्रोध चला जाएगा। तो ये क्रोध जरूर एक तरह का निम्न चीज माना जाता है, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में इसी क्रोध जो होता है भगवान उसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इधर देखते हैं नरसिंह लीला में अपने भक्तों का, भक्तों को जो तकलीफ देने वाले हैं उनके ऊपर भगवान नरसिंह देव क्रोधित होते हैं। आप देख सकते हैं कैसे उन्होंने हिरण्यकश्यप को पराजित किया और नाश किया। तो लीला के शुरुआत में आज जो हम अध्याय पढ़ रहे हैं, पहला इधर परीक्षित महाराज दो प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी को, क्योंकि उनको पता चलता है कि भगवान विष्णु हमेशा अपने भक्त जो होते हैं भक्तजन, नहीं तो इंद्र आदि देवता, इन लोगों को हमेशा वो साथ देते हैं, उनकी पक्ष में रहते हैं। और हमेशा भगवान लगता है कि ये योजना बनाते हैं कि वो राक्षसों को वैरियों को वो नाश करते हैं। जैसे हम श्लोक बोलते हैं ना, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्म से तदात्मान सृजाम्यहम्। एक ओर से परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो अपने देवताओं, देवता जो भगवान के भक्त हैं उनको रक्षा करते हैं भगवान, और असुरों को नाश करते हैं। ये क्यों है? क्योंकि इसके पिछले अध्याय में छठा स्कंद में एक ऐसा उल्लेख आता है कैसे भगवान ने इंद्र को बचाया। इंद्र ने अनेक गलतियां की थी छठे स्कंद में। हम देखते हैं कि इंद्र ने ये जो वृत्रासुर, बाद में वृत्रासुर बनते हैं त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप, उसको इंद्र ने लगाया था देवताओं की यज्ञ करने के लिए, लेकिन वो विश्वरूप का माँ असुर कुल से थी और बाप देवताओं के कुल से थे, ऐसे उनका इंटरकास्ट मैरिज हो गया था। इसलिए क्या हुआ, इसलिए विश्वरूप यज्ञ करते समय ऐसे श्लोक बोला, उन्होंने थोड़ा देवताओं को दिया और थोड़ा असुरों को आहुति दिया। उसको सुनकर इंद्र ने उसको तुरंत उसके गले को काटा, गले काटने के बाद वो मर गया उधर, और उनके पिताजी बहुत क्रोधित हो गए। तो इस तरह हम देखते हैं उधर से शुरू होकर इंद्र ने कितने गलतियां की, अनेक गलतियां की इंद्र ने। जब उनके पिता ने ऐसे एक यज्ञ किया जिससे उन्होंने इंद्र को मारने के लिए एक शत्रु पैदा करना चाहते थे वो, और ऐसे यज्ञ करते समय इंद्र शत्रु हो ऐसे उन्होंने यज्ञ किया, उसमें थोड़ा लंबा हो गया वो, इसलिए गलती हो गया। क्या गलती हुआ? इंद्र के शत्रु होने के बदले जो व्यक्ति इंद्र के द्वारा मारा जाएगा वो पैदा हुआ। ऐसे व्यक्ति को पैदा करना था उनको जो इंद्र को मारेगा, लेकिन कौन पैदा हुआ? जो इंद्र से मारा जाएगा वो पैदा हुआ, उसका नाम है वृत्रासुर। लेकिन वृत्रासुर साधारण असुर नहीं है, वृत्रासुर तो भगवान के महान भक्त चित्रकेतु हैं, किसी शाप के कारण उनको असुर बनना पड़ा, तो वो भगवान के शुद्ध भक्त बनते हैं वृत्रासुर। तो उसको भी इंद्र ने मारने के लिए बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली था, वो हजारों सैकड़ों हजारों देवताओं को वो ध्वंस करता था युद्ध भूमि में, उसके सामने कोई नहीं कर सकते, सब भागते थे उसको देखकर। तो भगवान विष्णु ने इंद्र को साथ दिया, तभी भी जाओ तुम दधीचि ऋषि के पास जाकर उनके अस्थि को मांगो और उससे एक वज्र का एक आयुध बनाओ, उसी वज्र से तुम इस असुर को मार सकते हो। तो तभी उसको प्राप्त हो गया उनके अस्थि, उसे वज्र बनाकर मारने के लिए बहुत प्रयत्न किया इंद्र ने। इंद्र को थोड़ा डर था, ये तो साधारण असुर नहीं है, ये चित्रकेतु है, ये तो महान महाभागवत भक्त है, क्या इसको हम मार सकते हैं? तो दूसरे देवताओं ने बड़ा गलती कर दी, उन्होंने बोला कि ए इंद्र तुम चिंता मत करो, तो मार डालो इसको, हाँ तो मारने के बाद हम लोग यज्ञ करेंगे नारायण को, यज्ञ से सब ठीक हो जाएगा, जिसे तुम उसको मार सकते हो मारो। तो इंद्र ने उसको मारा, उसके बाद पाप की मूर्तिमान स्वरूप एक बूढ़ी स्त्री उनकी उनको पीछे करने लगी आकाश मार्ग में, इंद्र भी भागने लगे उसके पीछे करने लगी वो। अंत में इंद्र सारे दुनिया में भाग कर जगह नहीं प्राप्त हुआ उनको कहीं भी, लास्टली किधर आए वो, एक मानसरोवर में एक सुंदर तालाब में एक कमल था, उस कमल के अंदर वो चले गए, क्योंकि कमल के अंदर लक्ष्मी की निवास स्थान है जो सब जीवों के माता है। तो वो लक्ष्मी माता के शरण में गया कि आप ही बचा सकते हो मुझे, मेरे जान बचाओ। तो जगन माता जो है उन्होंने रक्षा दी उसको और वो बचा गया इंद्र। उधर कठोर तपस्या किया आपने सब तरह के पापों से मुक्त होने के लिए। तो हम देख सकते हैं कि देवता और असुरों के बीच में हमेशा झगड़ा चलता है अनेक बार, लेकिन दिखता है कि भगवान विष्णु हमेशा देवताओं को साथ देते हैं और असुरों को मार डालते हैं। तो इस तरह का आश्चर्य हुआ उनको, परीक्षित को ये प्रश्न हुआ उनके मन में, क्यों ऐसा है कि भगवान हमेशा देवताओं को साथ देते हैं? कभी कभी लगता भी है कि इंद्र ने कुछ गलत किया है, फिर भी असुरों को भगवान क्यों मारते हैं? इस तरह का प्रश्न उनके मन में उठा, परीक्षित के मन में। तो उन्होंने दो प्रश्न पूछा, यह पहला प्रश्न था। तो क्या भगवान पक्षपात करते हैं, भेदभाव करने वाले हैं, क्योंकि देवता उनके चापलूसी करते हैं इसलिए देवताओं के पक्ष में भगवान उनको रक्षा करते हैं, और असुर क्योंकि उनके विरुद्ध पक्ष में इसलिए भगवान उनको मारते हैं? इस तरह का प्रश्न उठा उनके मन में। तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला, देखो परीक्षित, साधारण जीव जो होते हैं उनके अंदर इस तरह का पक्षपात होता है, भेदभाव करते हैं, कौन मेरा मित्र है कौन मेरा दुश्मन है, और मित्र को साथ देना और दुश्मन को पराजित करना हर एक व्यक्ति इस दुनिया में करता है ज़रूर। हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ दुश्मन कोई ना कोई होता ही है, जैसे दुर्योधन था, दुर्योधन को इच्छा हुई कि मुझे भीम के साथ ही लड़ना है और भीम को मारना मेरे जीवन का लक्ष्य है, ऐसे सोचा था दुर्योधन ने। इसका कर्ण ने भी एक शपथ ली थी, क्योंकि उसने पांडवों को अपने दुश्मन माना और उनमें से अर्जुन जो है उसको सबसे बड़ा दुश्मन माना कि उसको मुझे मारना चाहिए, अर्जुन को मार डालना है, वही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इस तरह हम देख सकते हैं कि आदमी इस दुनिया में बंधु नहीं तो मित्र मित्रता जोड़ते हैं किसी से, और किसी और से वो उसका दुश्मनी होता है। कभी कभी घर 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 में किसी किसी परिवारों के बीच में ऐसे झगड़ा हो जाता है, वो पीढ़ियों से चलता जाता है। वो चार पीढ़ियों के पहले किसी ने झगड़ा किया एक परिवार से, तो उनके बेटे उनके बेटे उनके बेटे कभी कभी आज भी चलता जाता है वो। एक दूसरे को टोकना और एक दूसरे को गाली देना और एक दूसरे को खींचने के लिए लोग ट्राई करते हैं ऐसे। तो इस तरह का दुश्मनी उन्होंने बोला सुखदेव गोस्वामी ने, इस तरह का दुश्मनी होता है तीन गुणों के कारण, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण के कारण। लेकिन भगवान तो गुणातीत हैं, भगवान खुद बताते हैं भगवद गीता में, सब गुणों से वो परे हैं, उनके लिए कोई भी दुश्मन नहीं है इस दुनिया में। हाँ, कोई भगवान से दुश्मनी नहीं कर सकता, और करेगा भी तो हार जाएगा वो। ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में जो भगवान से दुश्मन किया और भगवान को पराजित कर दिया, ऐसे एक भी व्यक्ति नहीं है। इतना तक कि एक बार बाणासुर के पक्ष में शिवजी चले गए, शिवजी ने झगड़ा किया भगवान कृष्ण के साथ, तो शिवजी ने भेजा शिवज्वर जो बहुत तेज से जल रहा था, बहुत तेजोमय था वो। लेकिन कृष्ण की पक्ष से जब नारायण ज्वर आया, वो पूरा ठंडापन कर दिया उसको, ठंडा कर दिया वो शिवज्वर को। तो भगवान ने ऐसे शिवजी को भी पराजित कर दिया उसमें। तो बोलने का मतलब क्या है, बड़े बड़े असुर हुए हैं इस दुनिया में जो भगवान को कभी भी पराजित कर नहीं पाए, भगवान से झगड़ा किया, बहुत बहुत बार झगड़ा किया उन्होंने। क्योंकि भगवान भगवान का शरीर जो है वो दिव्य शरीर है, आध्यात्मिक है, कोई भी उसको मार नहीं सकता, कोई भी उसको पराजित नहीं कर सकता। कभी कभी भगवान लीला करते हैं, जैसे एक बार भगवान युद्धभूमि से चले गए, वो भी एक लीला बन जाता है। भगवान को बोलते हैं रणछोड़, क्योंकि रणभूमि से चलने वाले को रणछोड़ बोलते हैं, माखन को चोरी करने वाले को माखन चोर बोलते हैं, है ना। यशोदा के जब प्रेम में पुत्र होते हैं उनको यशोदा नंदन बोलते हैं। तो भगवान जब रणभूमि से भागते हैं, वो भी एक लीला बन जाता है, वो उनके चरित्र के ऊपर दूषण नहीं है लेकिन एक भूषण बन जाता हो। दूषण का मतलब है निंदामय चीज, लेकिन भूषण का मतलब है एक तरह का अलंकार, आभूषण। क्यों? क्योंकि सब भक्तों को मालूम है कि भगवान अगर युद्ध भूमि से भी चलते हैं कहीं और, ये डर से भागते नहीं है भगवान। ऐसे भगवान को डरने की क्या चीज़ है इस दुनिया में, कौन मार सकता है उनको, कौन उनके दुश्मन है। भगवान ने सब जीवों को इस दुनिया में भेजा है, उनको शरीर प्रदान किया है, ये जेल खाना में सब जीवों को डाला है भगवान ने, और सब जीवों के वो भगवान नियंत्रण करता है, उनको कौन उनके साथ कौन झगड़ा कर सकता है। तो इस तरह असुर और देव जो होते हैं, इनमें भगवान क्यों देवता के साइड करते हैं, साइड में जाते हैं, क्यों असुर को साथ नहीं देते हैं, असुरों को मारने में भगवान को क्या मजा आता है, ये समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर हम सोचेंगे कि भगवान के हृदय में भी शायद ईर्ष्या भावना है, क्योंकि असुर लोग मेरे बारे में निंदा करते हैं उनको मारो, अगर हम ऐसे सोचेंगे तो भगवान के ऊपर पूरा विश्वास बैठेगा नहीं हमारे हृदय में। इसलिए भगवान के समदृष्टि को समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए अध्याय का शीर्षक है द सुप्रीम लॉर्ड इज इक्वल टू एवरीवन, परम भगवान जो है सब जीवों को समान तरीके से वो देखते हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए, पूतना नाम के एक राक्षस आई थी वृंदावन में, वो अपने स्तनों में विष को लगा कर आई थी भगवान कृष्ण को मारने के लिए। एक बहुत बड़ा राक्षसी थी, लेकिन देखने में बहुत सुंदर, एक महालक्ष्मी जैसे सुंदर शरीर को धारण करते हुए जब वो वृंदावन में आ पहुंची, सब ब्रजवासियों ने वो सब बोले बाले थे, उन्होंने सोचा कि ये कौन आ गई सुंदर महालक्ष्मी जैसे, सबने उसको परमिशन दे दिया अंदर आने के लिए। तो अंदर सीधा आ गई आंगन में है, तो उधर आकर भगवान कृष्ण को उठाकर अपने गोद में रखकर उनको अपने स्तनपान कराने लगी। तो कृष्ण ने क्या देखा गुण उस पूतना में, हालांकि पूतना का मनोदृष्टि क्या था, उसको कृष्ण को मारना था, क्योंकि वो कंस ने भेजा था उसको, कंस ने अनेक राक्षसों को भेजा, उसमें पूतना पहली थी, पहले पहले आ गई वो। तो तो ये पूतना जो आई थी कृष्ण को मारने के लिए आई थी, लेकिन साथ साथ उसकी उसको इच्छा थी कि कृष्ण को ये सुंदर बच्चे को मैं स्तनपान करूँ, इसको दूध दूँ, ऐसा सोचा उन्होंने। ये तो दूसरी लीला से इधर आता है कि जब बलि महाराज को भगवान वामन देव ने पराजित किया था, तीनों लोगों को घेर लिया उन्होंने अपने पदकमलों से, तभी भगवान उसके पहले जब सुंदर वामन देव के रूप में आए थे एक छतरी लेकर, वो इतने तेजोमय थे देखने में, उनके शरीर से एक तरह का कांति निकल रहा था, ब्रह्म तेजस। तो ऐसे एक छतरी लेकर आए थे, उसको देखकर सब लोग उधर उठ गए वो यज्ञ स्थली में। तभी बलि महाराज भी उनको देखकर किसी भी तरह का दान देने के लिए तैयार थे। उस समय बलि महाराज की एक बहन थी, उसने देखा था बलि महाराज को, देखा इनको देखा था वामन देव को, उन्होंने सोचा कि ये कितना सुंदर बच्चा है, मुझे भी ऐसे एक बच्चा होता था और मुझे भी अगर मैं ऐसे एक बच्चे को दूध पिला सकती तो कितना अच्छा होता, ऐसे उसने सोचा था। लेकिन बाद में जब वामन देव ने अपने स्वयं का स्वरूप दिखाया, त्रिविक्रम बनकर सारे बलि महाराज की संपत्ति को उन्होंने ले लिया, तभी इनका मनोदृष्टि पूरा, इनका दृष्टिकोण पूरा बदल गया। ये स्त्री ने सोचा कि अरे मैंने सोचा था कि ये कितना कितना सुंदर बच्चा है, लेकिन इसने मेरे भाई बलि महाराज का सब कुछ ले लिया। इस तरह सोचकर वो बहुत क्रोधित हो गई, वो उसको लगा कि मुझे लगता है कि उसको मार डालना चाहिए अभी, ये भावना आ गया। पहले तो मातृ भावना था, बाद में राक्षसी भावना बन गया वो, इसलिए अगले जन्म में वो क्या बनी, वो पुतना बन गई। तो अभी इस जन्म में भगवान ने उसको दोनों चीज़ों को करने के लिए मौका दिया, तुमको दूध पिलाने की इच्छा थी तो अभी वृंदावन में आकर दूध पिलाने लगी भगवान कृष्ण को, साथ साथ कृष्ण को मारने की इच्छा थी उसको, इसलिए मारने के लिए उसने विष को अपने स्तन में लगा कर आई थी वो इस तरह। लेकिन भगवान ने क्या किया, उसके स्तन से दूध पीते समय पीते पीते उसको जान को भी चूस लिया भगवान ने, और वो चिल्ला चिल्ला कर वो मर गई। लेकिन उसको भगवान ने भगवत धाम में एक दात्री का पद भी दिया, ये भागवत में आता है एक श्लोक में, अहो बकियम स्तन काल कूटम जिगाम सया पाय साध्वी लेभे गतिम दात्री उचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। तो उद्धव बताते हैं कि कौन ऐसे कृपालु भगवान हो सकते हैं इस दुनिया में जो अपने को मारने के लिए जो राक्षसी पूतना आई थी उसको भगवत धाम में एक दात्री का स्थिति प्रदान किया, इससे कोई दयालु हो सकते हैं, कम वा दयालुम शरणम व्रजेम, ऐसे बताते हैं। तो इस उदाहरण से हम क्या समझते हैं, ऐसे राक्षसी को भी भगवान ने एक माता का स्थान दिया, जैसे यशोदामयी की वो असिस्टेंट बन गई, वो कितना महान स्थान दिया ऐसे एक राक्षसी को। इससे हम क्या समझ सकते हैं, भगवान राक्षसों से, राक्षसों के दुश्मन नहीं है भगवान, इस तरह हम समझ सकते हैं। कभी कभी घर में जो बच्चा होता है, माँ जो होती है कभी कभी एक बच्चे को लाफा देती है और दूसरे बच्चे को आलिंगन करती है, आपने देखा होगा है ना। जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ाई करता है ठीक तरह से, उसको माँ आलिंगन करती है, उसको स्वीट खिलाती है, और दूसरे बच्चा जो हमेशा कॉमिक्स पढ़ता है नहीं तो खेलता रहता है दिन भर, उसको एक लाफा देती हो। लेकिन माँ दोनों को प्रेम करती है, समान प्रेम करती है वो, उसका लाफा देना भी उसका प्रेम का एक प्रकटीकरण है, ये समझना बहुत आवश्यक है। तो भगवान अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से अपने प्रेम को प्रकट करते हैं, जैसे एक माँ प्रकट करते हैं अपने प्रेम को। कुछ बच्चों को लाफा देना ही आवश्यक हो जाता है, लाफा दे बिना सुधरते नहीं वो, है ना। और कुछ बच्चे ऐसे स्वाभाविक रूप से ईमानदार होते हैं। इस तरह राक्षसी लोग वो जीव हैं जो भगवान के विरुद्ध काम करने वाले होते हैं। विष्णु भक्त स्मृतो दैव आसुरस्तत विपर्ययः, ऐसे बताया गया, विष्णु भक्त स्मृतो दैव आसुरस्तत विपर्ययः। एक ही चीज है जो भगवान के भक्त होते हैं, देवता सुर और असुर, इन दोनों के बीच में भिन्नता को प्रदान हमको समझ आता है। इन दोनों में क्या भिन्नता है, क्या भेद है, असुरों में सुरों में एक ही चीज है। सुर वो लोग हैं, हमारे सुदामा प्रभु बोलते थे, सुर वो लोग हैं जो भगवान के सुर से सुर मिलाते हैं वो सुर है, भगवान के सुर से सुर मिलाते हैं वो सुर है। इसका मतलब क्या है? तो भगवान की योजना के अनुसार चलने वाले सुर होते हैं। हाँ, भगवान की, भगवान को जो कुछ देगा वही करेंगे वो देवता है। लेकिन जो असुर हैं वो क्या करते हैं? आसुरस्तद विपर्यय है, जो भगवान इच्छा करते हैं उसके विरुद्ध ही काम करेंगे हमेशा। ये हम देख सकते हैं सुर और असुरों में। तो इस भौतिक दुनिया को भगवान ने क्यों बनाया है? हमको सुधारने के लिए बनाया भगवान ने, है ना। तो शास्त्र में बताते हैं भगवान, जैसे भगवत गीता के 16वें अध्याय के लास्ट श्लोक में बताते हैं, यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो लोग शास्त्र विधि को तोड़ते हैं उनको सुख इस दुनिया में भी नहीं पर लोक में भी नहीं मिलेगा, ऐसे भगवान बोलते हैं। यह असुरों का स्वभाव है हमेशा भगवान से दिया को, भगवान के कानून को तोड़ना, ये उनका नियम है। हमेशा विरुद्ध चलते हैं, जिस पथ में चलना है उसके अपोजिट में चलते हैं। जैसे समुद्र मंथन लीला में भगवान ने पहले असुरों को वो वासुकी का पूंछ दिया था, अब देवताओं को सर दिया था, और दोनों लोग मंथन करने लगे। अचानक सब असुर पूछने लगे, हमको क्यों विष्णु ने पूंछ दिया है? पूंछ की पक्ष जो है वो निंदनीय निंदनीय है वो, इसलिए हमको छोटा बनाकर पूंछ दे दिया है, इसलिए उन्होंने स्ट्राइक में चला गया, वो बायकॉट किया उन्होंने, हम अभी इसके लिए तैयार नहीं है, हम मंथन के लिए हम तैयार नहीं हैं। तो भगवान ने पूछा उनको, क्या चाहिए आपको? उन्होंने बोला, हमको वासुकी की सर चाहिए, सर के साइड चाहिए। भगवान ने देवताओं को बोला, ठीक है आप लोग उस साइड में चले जाओ। सब देवता पूंछ की ओर चले गए। देवताओं को कुछ प्रॉब्लम नहीं, जो विष्णु बोलते हैं वो करेंगे वो तुरंत बस, क्योंकि उनको मालूम है कि विष्णु जो भी बोलते हैं वो हमारे लिए श्रेष्ठ है। तो चले गए, तो असुर लोग आ गए वासुकी के सर की साइड में। और जब मंथन हुआ, वासुकी की शरीर, क्योंकि वो मंदराचल पर्वत था, उसकी मंथन होने से वासुकी के शरीर से धुआं निकलने लगा, ऐसे पूरा धुआं, और इतना काला काला धुआं आ रहा था, पूरा विषैली जहरीला था वो। तो जो असुर अभी पकड़े थे मुंह के साइड, क्या हुआ, उनके सब नाक के मुंह के अंदर, नाक के अंदर सब चला गया, सब चिल्लाने लगे, अनेक लोग बेहोश होकर गिरने लगे, क्योंकि पहले उन्होंने भगवान के आयोजन को अपनाया नहीं, इसलिए उनको इस तरह की समस्या को सामना करना पड़ा। इस तरह भगवान ने यह भी बोला था सब लोगों को, असुरों को, देवताओं को, जो भी आएगा समुद्र मंथन से, आप लोगों को क्या करना चाहिए, किसी भी चीज़ को स्वीकारना नहीं चाहिए, जब तक आपको दिया जाता है तब तक आपको स्वीकारना नहीं किसी भी चीज़ को, या आपका नहीं है मैं आपको बंटवा बांटना, मेरा कर्तव्य मैं करूँगा। लेकिन असुर लोगों का स्वभाव ऐसे होता है, वो पहले मानते हैं नियम को, कानून को मानते हैं, लेकिन बाद में उसको पालन नहीं करते हैं, उसको तोड़ देते हैं उसको। जैसे अनेक चीज़ निकला समुद्र मंथन में, तो एक एक करके, और भगवान कुछ चीज़ों को असुरों को दिया, भगवान ने कुछ चीज़ों को देवताओं को दिया, अब सब लोग सहमत थे। लेकिन अंत में जब अमृत निकला, धन्वंतरी आए समुद्र से, अमृत के एक गड़ा बोलते हैं उसको, कलश, अमृत के सुंदर कलश को लेकर आए थे, उस कलश में अमृत था जिसको पीने से हमारे आयु को हम बहुत लंबा कर सकते हैं बहुत समय। तो कलश के लिए वेट कर रहे थे, जब आया तुरंत असुर लोगों ने क्या किया, छीन कर भाग गए उधर से। हालांकि देवता लोगों ने भी देखा, लेकिन देवता ने कुछ नहीं किया, उनको मालूम था कि भगवान ने बोला हमको किसी भी चीज़ को छीनने की ज़रूरत नहीं, जब सही टाइम आएगा तभी भगवान देंगे, वो भगवान के लिए वेट कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, देखिए भगवान को कोई धोखा नहीं दे सकता है। जब असुर लोग उसको छीन कर लेके गए, उनके असुरों के ग्रुप का एक जयंत नाम का बड़ा नेता था, तो उसने कलश पकड़ कर रखा था, तो शक्तिशाली लोग जो थे असुर थे वो कलश को पकड़ कर अपने पास रख लिया, और जो कमजोर असुर थे वो समझ गए कि हमको मिलने वाला नहीं है अभी, और वो सब लोग रो रहे थे। उन्होंने बोला कि सबको बांट कर खाओ, अकेले मत खाओ, ऐसे वो झंडे पकड़ने लगे, वो चिल्लाने लगे ऐसे। लेकिन शक्तिशाली लोगों ने सोचा कि अभी हम खुद खा लेंगे पूरा, ऐसा एक श्लोक आता है उधर, मिता कलेर अभूत तेषां, तदर्थे तर्ष चेतसाम अहम पूर्वम अहम पूर्वम नत्वम नत्वम इति प्रभु। अहम पूर्वम, अहम पूर्वम मतलब मैं पहला, मैं पहला, तुम नहीं, तुम नहीं, नत्वम नत्वम, ऐसे सब असुर असुर लोग चिल्ला रहे थे, हम पहला भोगेंगे, हम पहला भोगेंगे, आप लोग हट जाओ, हट जाओ, सबको हटाकर खुद भोग करने के लिए वो ऐसे ट्राई कर रहे थे। वो इस तरह करते समय भगवान ने क्या किया, भगवान तो सबसे चतुर हैं, एक सुंदर श्याम वर्ण का एक मोहिनी मूर्ति का रूप धारण करते हुए भगवान आ गए सामने। तो मोहिनी मूर्ति का भी वर्ण श्याम वर्ण ही है, और बड़े बड़े सुंदर आंखें थे उनके भ्रमर के समान, और वो मोहिनी मूर्ति ऐसे चल रही थी सुंदर सिल्क के कपड़े पहनते हुए। तो उसको जब असुर ने देखा तुरंत मोह में पड़ गए, मोहित हो गए, सब लोग अपने अमृत को पीने को भूल गए, सब उसकी ओर देखने लगे उसको, है ना। तो सब लोग उसको बोलने लगे तुम इसको बंटवारा करो, हम सबको, हम तुम्हारे हाथ में हम दे देते हैं। हालांकि मोहिनी ने बोला कि मैं अकेली स्त्री हूँ, मैं चल रही हूँ, मेरे हाथ में कैसे आप लोग दे रहे हैं, और मैं जो करना चाहती हूँ मैं करूँगी, ठीक है। सब लोगों ने नो प्रॉब्लम करिए, सब दे दिया उसके हाथ में। और बाद में उसने क्या किया आपको मालूम है, ऐसे। तो विष्णु के एक रूप है धन्वंतरी, उनके हाथ से छीन लिया असुर ने किसको, अमृत के कलश को, है ना। और विष्णु के दूसरा स्वरूप है मोहिनी मूर्ति, उनके हाथ में दे दिया। देखिए भगवान, भगवान की कितना चतुरता है। अगर हम सब चीज़ों को लेकर खुद भोग करना चाहते हैं, भगवान को नहीं देना चाहते हैं, तो हम देखेंगे कि हम माया देवी को दे देते हैं बाद में, या तो हमें कृष्ण को खर्चा करेंगे, नहीं तो माया देवी को खर्चा करेंगे, हम देख सकते हैं। ये नियम है, ये दुनिया का नियम है। तो इस तरह हम देख सकते हैं अंत में असुरों, असुरों ने धोखा खाया। उधर उस अध्याय के अंत में ऐसा एक बताया गया है, वो दोनों ने एक ही कार्य किया, दोनों असुरों ने, देवों ने क्या किया, समुद्र मंथन ने किया, और दोनों साथ में ही किया, और एक ही समय में किया, और एक ही लक्ष्य के लिए किया, सब कुछ एक ही था, लेकिन एक बड़ा फर्क था। क्या फर्क था, देवताओं ने भगवान की कानून, भगवान के आदेश को स्वीकारा, और असुरों ने नहीं स्वीकारा, इसलिए भगवान देवताओं के साथ में थे और असुरों के साथ भगवान नहीं थे, इसलिए असुर हार गए। तो हम समझ सकते हैं इस तरह। तो भगवान जो हैं वो सबके शुभ चिंतक हैं, वो किसी के वैरी नहीं हैं, किसी के दुश्मन नहीं हैं। भगवान भगवान सबको भलाई करना चाहते हैं, लेकिन ये असुर, असुरों का स्वभाव ऐसे होता है, भगवान जो भी चाहते हैं उसके विरुद्ध हैं, बस वो सही हो गलत हो कुछ नहीं, हम उसके विरुद्ध हैं, भगवान को मानेंगे नहीं हम, ये उनका स्वभाव है। इसलिए उनके बीच में भी झगड़ा होता है। हम देख सकते हैं देवता किस स्तर पर जीते हैं और असुर किस स्तर पर जीते हैं। जैसे तो बताया जाता है कि एक प्रजापति के पास विरोचन गए थे और इंद्र गया था, दोनों गए थे उनसे शिक्षण लेने के लिए। तो बहुत समय शिक्षण प्राप्त हुआ, उसके बाद अंत में उन्होंने पूछा गुरु को, गुरु जी अब बताओ, अंत में एक लास्ट इंस्ट्रक्शन, उपदेश बताओ हमको, उसको लेकर हम लोग अपने अपने जगह में जाते हैं और हम कार्यशील हो जाएंगे उसके बाद। तो गुरु ने बोला उनको, ये समझो कि आप, सो अंग्रेजी में उन्होंने क्या बोला, अंडरस्टैंड दैट यू आर दिस वेरी सेल्फ, आप समझो कि यही आप खुद स्वयं, व्हाट इज सेल्फ इन हिंदी, आत्मा, अंडरस्टैंड दैट यू आर दिस वेरी सेल्फ, हाउ डू यू से, उन्होंने बोला कि आप समझो कि आप खुद ये आत्मा हो, इसको आप समझो, इस तरह बोला उन्होंने। आत्मा का अलग अलग मीनिंग होता है संस्कृत में भी, आत्मा को शरीर से भी, शरीर भी आत्मा, आत्मा को शरीर भी बोलते हैं, मन भी बोलते हैं, बुद्धि भी बोलते हैं, और आत्मा भी बोलते हैं, सब चीज़ों का मतलब होता है आत्मा होता है। जैसे हम आत्मा पूजा बोलते हैं, वो शरीर का पूजा कभी। तो दोनों गए, ये एक विरोचन राक्षस थे और इंद्र देवता था, दोनों गए। अब दोनों अपने आईने में देख लिया, तो इंद्र ने देखा आईने में, क्या मेरे गुरु ने बोला कि ये आत्मा है, क्या ये शरीर में शरीर हो, क्या शरीर की पोषण करना चाहिए। उन्होंने सोचा कि शरीर तो मृत चीज़ है, मरने वाला चीज़ है, तो उन्होंने सोचा कि शरीर नहीं होगा, शायद मन होगा। मन भी बदलता रहता है हमेशा, बुद्धि भी बदलता रहता है। अंत में वो जान लिया उन्होंने कि आत्मा जो होता है वो एक व्यक्ति का असली स्वरूप है। इसलिए उन्होंने जाकर सब देवताओं को बोला कि तुम आत्मा की भलाई के लिए काम करो, शरीर की इंद्रिय तर्पण में मत लगाओ, ऐसे उन्होंने सिखाया। इसलिए सब लोग देवता बन गए। और जो विरोचन था वो आईने में जाकर देखा, अपने शरीर को देखा, सोचा कि यही आत्मा है शरीर। तो वो जाकर अपने असुर मित्र को बोला, सब लोग आप इंद्रिय तर्पण करो, इंद्रियों और मन को तुम सुख प्रदान करो, क्योंकि तुम ये शरीर ही हो, बस शरीर से ऊपर कुछ नहीं है। असुर का मतलब असुर, असुर का मतलब है तुरंत, रह का मतलब रमण करने वाले, तुरंत मिलने वाली सुख जो है क्षणिक सुख, क्षणभंगुर सुख, उस सुख के पीछे भागने वाले असुर हैं, उनको असुर बोला जाता है। इसलिए आसुरिक लोग हमेशा इंद्रिय तर्पण में लगे रहते हैं, और जो देवता हैं वो भगवान के पास जाते हैं, हमेशा भगवान का वो उपदेश लेते हैं। तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि ये तामा प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि अहम्, जो मेरे शरण जाते हैं उसके अनुसार मैं उनकी भलाई करता हूँ, उसके अनुसार। तो असुर भगवान से द्वेष करते हैं और खुद को मानते हैं कि मैं भगवान का दुश्मन हूँ। जैसे हम आगे पढ़ेंगे इसमें, हिरण्यकश्यपु ने सोचा था कि विष्णु मेरा दुश्मन है, क्यों? क्योंकि मेरे भाई को उन्होंने मार डाला, इसलिए मैं, उन्होंने बोला अपने राक्षसों को, हे राक्षसों, मैं ये विष्णु को मैं मार डालूंगा, क्योंकि अगर वो मर जाते हैं तो जिस तरह एक पेड़ को जड़ से निकाला जाए और जड़ को काटा जाए तो क्या हो जाएगा, वो पेड़ पूरा, उसके डाली पत्ते सब सूख जाएंगे। इस तरह देवताओं की शक्ति किधर से मिल रहा है, विष्णु से, तो मैं विष्णु को मैं मार दूंगा, ऐसे बोला हिरण्यकश्यपु ने। तो इससे हम समझ सकते हैं कि राक्षसी प्रवृत्ति लोग खुद को मानते हैं कि वो भगवान के दुश्मन है, भगवान नहीं मानते कि राक्षस मेरे दुश्मन है। भगवान इतना तक कि उनको भी भलाई करने के लिए भगवान सोचते हैं, लेकिन राक्षसी लोग, जैसे युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच में जो रिश्ता था, युधिष्ठिर हमेशा दुर्योधन को भलाई करना चाहते थे, लेकिन दुर्योधन हमेशा खुद को मानता था कि मैं युधिष्ठिर का मैं दुश्मन हूँ, नहीं तो युधिष्ठिर मेरा दुश्मन है, ऐसा वो सोचता था। भगवान के भक्त भी राक्षसों को अपने दुश्मन नहीं मानते हैं। जैसे हम गाते हैं गोस्वामी के बारे में, धीरा अधीर जनप्रिय, धीर और अधीर दोनों को भगवान के भक्त प्रेम करते हैं। चाहे कोई भक्त नहीं हो, उनको भी भगवान के भक्त प्रेम करते हैं, ताकि उनको भी भक्ति प्राप्त हो, उनको भक्ति देने के लिए प्रयत्न करते हैं भगवान के भक्त। तो अगर भगवान के भक्त द्वेष भावना नहीं रखते हैं तो भगवान के अंदर कैसे द्वेष भावना हो सकता है? तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने बोला उनको कि देखो, भगवान तीन गुणों से परे हैं, इसलिए उनमें कभी भी इस तरह का भावना नहीं होता कि कोई मित्र है कोई शत्रु है। और भगवान को किसी व्यक्ति की मित्रता का भी जरूरत नहीं है। अगर भगवान देवताओं की मित्रता करते हैं, क्या भगवान को कुछ भलाई होने वाला है? कुछ भी भलाई नहीं होता है। जैसे इस दुनिया में कभी कभी हम किसी बड़े राजनीति व्यक्ति की मित्रता जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि बाद में कुछ मदद हो सकता है उससे, हाँ, इसलिए। नहीं तो किसी धनी आदमी के साथ कोई रिश्ता रखना चाहते हैं, क्योंकि शायद अगर भविष्य में कुछ समस्या हो जीवन में तो उससे पैसा हम कर्जा ले सकते हैं। लेकिन भगवान को भलाई करने वाला कौन है इस दुनिया में? कोई भी भलाई नहीं कर सकते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज ने एक सुंदर श्लोक बोला, उन्होंने बताया उसमें कि जिस तरह आईने में जब हम बिंदु 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 बोलते हैं, बिंदी बोलते हैं, बिंदी बिंदी बोलते हैं, बिंदी जब लगाते हैं आईने में, तभी जो हमारा प्रतिबिंब है आईने के अंदर, उधर भी बिंदी लग जाता है ना। इस तरह सब जीवात्मा जो है, हम भगवान के एक प्रतिबिंब हैं, अंश हैं। इसलिए अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो किसको भलाई होता है? हमको भलाई होता है, ऐसे बोला प्रहलाद महाराज ने। और भगवान को कोई भी किसी भी तरह का भलाई नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान सबके पिता हैं, सबके स्रोत हैं, उनको देने के पास हमारे पास कुछ नहीं है। अगर कुछ देते भी हैं तो जो चीज़ भगवान ने हमको दिया वही हम दे सकते हैं उनको, ऐसे बताया उन्होंने। अगर वो देने के बाद भी भलाई आपको ही है, भगवान को नहीं है, ऐसे बताया उन्होंने। तो इस तरह भगवान को कोई भलाई नहीं कर सकता, भगवान को कोई बुराई नहीं कर सकता। भगवान सबके परम पिता हैं, सबके शुभ चिंतक हैं, सूर्यदम सर्वभूता नाम। इस तरह बताया सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को। उन्होंने ये भी बोला कि भगवान इतने शक्तिशाली हैं, काल का भी प्रभाव नहीं पड़ सकता है भगवान के ऊपर, ऐसे बोला उन्होंने। ये समझो सब जीव इस दुनिया में भटक रहे हैं लेकिन काल के प्रभाव में आकर मर जाते हैं। जब छोटा बच्चा है वो युवक बन जाता है, बूढ़ा बन जाता है, अंत में काल के प्रभाव में आ जाता है। अनेक असुर भी आते हैं, देवता भी आते हैं, वो भी मर जाते हैं। शायद बहुत सालों साल जीते हैं लेकिन अंत में मर जाते हैं वो। लेकिन भगवान जो है काल के प्रभाव में नहीं आते हैं। भगवान काल तो भगवान के जैसे कठपुतली के समान है, भगवान के हाथ के अंदर में है काल। काल को भगवान नचाते हैं, भगवान बताते हैं कालोस्मि अहम्, मैं खुद काल हूँ जिससे मैं सब लोगों को निगल रहा हूँ। जैसे जब अर्जुन ने देखा, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विश्वरूप दर्शन दिखाया, तो अनेक लोग पूछते हैं आप भगवान को, भगवान कृष्ण को आप क्यों भगवान मानते हो? क्योंकि भगवान ने ऐसे विश्वरूप दर्शन दिखाया जो कोई भी नहीं दिखा सकता है। उस विश्वरूप में इतने अनेक तरह तरह के सर थे, अलग अलग डिजाइन के सर थे, हजारों करोड़ों सर थे, करोड़ों हाथ थे, करोड़ों पांव थे, पैर थे, और चारों दिशाओं में पूरे घेरे हुए थे ऐसे भगवान। तो अर्जुन को पता नहीं था किधर शुरू होता है, किधर अंत होता है, कैसे देखना है। उन्होंने बोला, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ चारों दिशाओं में, मैं आपको करोड़ों करोड़ों नमस्कार मैं करता हूँ, अर्जुन ने बोला उनको। उस समय अर्जुन ने देखा द्रोण और जैसे द्रोणाचार्य, भीष्म, दुर्योधन, कर्ण, सब लोग भगवान के, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च, सब लोग जा रहे थे भगवान के मुख के अंदर। नरसिंहदेव भगवान की। तो भगवान का जो दांत जो उनको उनके सर को चूर चूर कर रहा था ऐसे, और उधर से खून निकल रहा था भगवान के मुंह से, और भगवान उसको ऐसे ले लिए थे, ऐसे बोला ले लिए थे। उसका हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, ऐसे करना तो लिख चाट रहे थे। उसको देखकर अर्जुन डर गया, लेकिन वो असुर बाद में मरने वाले थे, लेकिन मरने के पहले पहले भगवान ने दिखा दिया अपने विश्वरूप दर्शन में। उन्होंने बोला अर्जुन को, हे अर्जुन, ये सब लोग मरने वाले लोग हैं, दुर्योधन, कर्ण, जयद्रथ, सब लोग बाद में मरने वाले हैं। अगर तुमको शंका है तो देख लो मेरे विश्वरूप दर्शन में, मैं दिखाता हूँ तुमको। मुझे तीनों काल मालूम है, भविष्यकाल, भूतकाल, वर्तमान काल, सब कुछ मालूम है मुझे। और ऐसे लोगों को मरना ही है, वो मरेंगे, तुम सिर्फ निमित्त बनाओ और तुम इस तरह लड़ाओ, लड़ाई करो, ऐसे ऐसे बोला भगवान ने। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि भगवान क्यों मारते हैं। अगर भगवान दुर्योधन को मारते हैं, कर्ण को मारते हैं, मार डालने के लिए आयोजन करते हैं, इस तरह का युद्ध मचाते हैं, उसके पीछे भी कारण है। ये जो युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र का, वो एक साधारण युद्ध नहीं है। कभी कभी लोग पूछते हैं भारत में और बाहर भी, भगवान कृष्ण ने इस तरह का युद्ध क्यों मचाया पांडव कौरवों के बीच में? अच्छा होता था अगर वो शांति फैलाते थे, भगवान का मतलब है शांति फैलाना चाहिए, वो क्यों इस तरह का युद्ध मचाते हैं भाई भाइयों में? इसलिए कभी कभी लोग अपने घर में, अगर महाभारत वगैरह होता है तो बच्चों को बोलते हैं कि तुम इसको मत पढ़ो, घर में कुछ कलह हो जाएगा, ऐसे कुछ लोग सोचते हैं भारत में। एक बहुत बड़ा गलती है। एक्चुअली महाभारत पढ़ने से, महाभारत के अंदर जो भगवद्गीता को रखा है भगवान ने, उसको पढ़कर हम हमारा उद्धार हो जाएगा, इसलिए उसको पढ़कर समझना चाहिए उसको। तो भगवान क्यों युद्ध मचाते हैं? यह युद्ध है बड़ा धर्म युद्ध है, ये धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध है। और अर्जुन और पांडव सब धार्मिक थे, और सब धार्मिक राजा उनके पक्ष में चले गए, और अधर्म के पक्ष वाले थे जैसे शिशुपाल, जैसे दुर्योधन, ये सब असत लोग हैं, राक्षसी प्रवृत्ति वाले हैं। जैसे शिशुपाल ने निंदा किया भगवान की, तो हम देख सकते हैं इस तरह का असुर प्रवृत्ति वाले और सुर प्रवृत्ति वाले, उनके बीच में लड़ाई हुआ, और अंत में भगवान ने, भगवान की आशीर्वाद से, भगवान की सहायता से हम देखते हैं कि पंचपांडव हालांकि वो पांच थे फिर भी वो उनको विजय प्राप्त हुआ। और भगवान क्यों असुरों को साथ देते हैं उसका एक कारण है। एक चीज तो असुर लोग भगवान की उपदेशों को पालन करते हैं अपने जीवन में, ये कारण है। दूसरा है ये भौतिक दुनिया को भगवान एक कारण के लिए बनाया है। भगवान ने एक बहुत बड़ा कारण है भौतिक दुनिया क्यों बनाया भगवान ने, क्योंकि इस भौतिक दुनिया में जीवों को सुधार कर शुद्ध बनाकर भगवान उनको भगवत धाम वापस लौटाना चाहते हैं। लेकिन असुर लोग क्या करते हैं, भगवान की योजना के विरुद्ध काम करते हैं। उदाहरण के लिए हम आगे पढ़ेंगे हिरण्यकशिपु, उसने क्या सोचा, जो लोग पुण्य करते हैं उनको नरक में भेजना है, जो लोग पाप करते हैं उनको स्वर्ग में भेजना है, ऐसे उन्होंने आयोजन बनाया। सब तरह के पाप करो, मांस खाओ, जुआ खेलो, अवैध स्त्री संग करो, नशा खाओ, आपको स्वर्ग प्राप्ति। और आयोजन करने वाले कौन, स्पॉन्सरशिप बाय हिरण्यकशिपु, ही विल स्पॉन्सर हेवन फॉर यू, आपको स्वर्ग में भेजेंगे वो। और जो लोग अच्छे हैं, यज्ञ करते हैं, गोरक्षा करते हैं, शुद्ध जीवन ऊंचे विचार पे जाते हैं, उनको नरक में भेजो। इसने आयोजन किसने किया, हिरण्यकशिपु ने किया। ऐसे तो ये असुरों का सभ्यता है हम देख सकते हैं। इसलिए असुर अपने जीवन में जो भी तकलीफ उठाते हैं वो उठाते हैं खुद के कार्यकलाप के द्वारा। अभी रावण को भगवान रामचंद्र ने क्यों मारा, भगवान रामचंद्र ने बोला एक बार जब वो लंका में आए थे सब लोग मर गए, इंद्रजीत मर गया, उसके बाद कुंभकर्ण मर गया, सब लोग मर गए। कुंभकर्ण ने बोला था रावण को, हे रावण अगर मैं युद्ध भूमि में जाकर मैं मरूंगा उसका मतलब है तुमको विजय प्राप्त नहीं होगा, अच्छा कि तुम शरण जाओ रामचंद्र को, ऐसे उसने बोला था कुंभकर्ण ने, क्योंकि तुम मेरे भाई हो, तुम्हारे लिए मैं लड़ाई करता हूँ। तो कुंभकर्ण मर गया। उसके बाद रावण लड़ने के पहले भगवान रामचंद्र ने बोला अपने पार्षदों को, अभी भी अगर रावण शरण आएगा तो मैं उसको माफ़ करने के लिए मैं तैयार हूँ। राम ने इसे बोला, जब विभीषण शरण लिया था रामचंद्र ने बोला कि जो मेरे शरण में आते हैं चाहे चाहे वो असुर भी हो रावण भी हो उनको मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा नहीं कि भगवान सिर्फ मुँह से बोलते हैं, भगवान ने किया भी है। जैसे कांडवप्रस्थ जंगल में तरह तरह के राक्षस थे उसके अंदर, इसलिए एक बार अग्नि को कांडवप्रस्थ ये जंगल जो उसको निगलना था, लेकिन इंद्र क्या करता था, इंद्र वर्षा करता था ऊपर से, इसलिए भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों ने अग्नि को मदद किया और कांडवप्रस्थ जंगल के वैसे गोल गोल घूम घूम कर क्या करते थे वो, अर्जुन ऐसे तीर चलाता था, सब तीरों के कारण बारिश रुक गया, ऐसे उन्होंने तीर चलाया ऐसे। तो तभी जंगल जल रहा था और अंदर से सब तरह के राक्षस और सब तरह के सर्प और सब तरह के जंगल में रहने वाले तरह तरह के प्राणियाँ जो ऋषि मुनियों को बहुत तकलीफ देने वाले वो सब भागकर बाहर आ रहे थे। कुछ प्राणी तो जल गए आग में लेकिन कुछ भागकर बाहर आ रहे थे। और अर्जुन क्या करता था, जो बचकर जा रहे हैं उनको मारता था वो, क्योंकि वो बाद में समाज के लोगों को तकलीफ देगा वो सब, इसलिए ऐसे असुरों को वगैरह मार रहा था वो। ऐसे मारते समय एक असुर भागकर आया बाहर, उसका नाम था माया दानव, लेकिन वो बुद्धिमान असुर था। उसने क्या किया, जंगल से बाहर आते समय भागकर वो अर्जुन के पांव में गिर पड़ा, वो जाकर बचाओ बचाओ अर्जुन मुझे बचाओ, ऐसे अर्जुन के पांव को पकड़ लिया। और क्योंकि उसने पांव पकड़ा अर्जुन ने उसको मारा नहीं, अर्जुन ने उसको छोड़ दिया। और अर्जुन ने बोला ठीक है भगवान कृष्ण जो भी बोलेंगे तुम उनको कुछ भलाई करो, तुम उनका शरण जाओ, ऐसे बोला। तो इस तरह भगवान कृष्ण और अर्जुन के शरण लेकर माया दानव बच गया और भगवान कृष्ण ने उसको मारा नहीं बाद में भी। हम देखते हैं भगवान कृष्ण ने बोला उसको, पांडवों के लिए एक सुंदर माया सभा बनाओ, एक महल बनाओ, ऐसे भगवान ने उसको एक आदेश दिया। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि भगवान की इच्छा नहीं है असुरों को मारना, लेकिन वो सुधारना चाहते हैं। लेकिन असुर हट करते हैं, सुधारने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जैसे भगवद गीता में दो श्लोक आते हैं, बहुत खतरनाक श्लोक हैं, उसमें भगवान बोलते हैं व्हाट इज दैट फर्स्ट वर्स, आसुरिम योनि मापन्ना मूढ़ा जन्म जन्म, प्रीवियस वर्स, यू नो द प्रीवियस वर्स एनीबडी, या भगवद गीता होती है? भगवद गीता। आसुरीं जाउनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिं। तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि जो लोग असुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, ये 16वें अध्याय में आता है 20वां श्लोक, इधर भगवान बताते हैं, तान अहम द्विषत क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरीषु एव योनिषु। भगवान बताते हैं जो लोग अहंकारी लोग हैं, आसुरी लोग हैं, जो भगवान के विधि विधानों के विरुद्ध चलने वाले होते हैं, उन लोगों में क्या करता हूँ? भगवान बोलते हैं उनको मैं क्षिपामि अजस्रम अशुभान, उनको मैं नीचे जानवर के योनि में डालता हूँ। भगवान बोलते हैं हम सब अभी मानव शरीर प्राप्त हुआ है हमको, लेकिन अगर हम भगवान के विधि विधानों के विरुद्ध जाएंगे तो भगवान बोलते हैं कि मैं उनको कुत्ते के शरीर में, बिल्ली के शरीर में, काकरोच के शरीर में, या कीड़े के शरीर में, अमीबा के शरीर में डाल देता हूँ। ऐसे नीचे 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 योनि में वो लोग जाते हैं, उसके बाद पेड़ पौधे के शरीर में। अगर इतना दंड देने के बाद भी अगर जीव सुधरता नहीं, बार बार गलती करता रहता है मनुष्य के शरीर में, तो उसको असुर का शरीर प्राप्त होता है और वो कभी कभी बड़ा असुर बन जाता है। आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, जन्म के बाद जन्म के बाद जन्म के बाद बड़ा बड़ा असुर बनता जाता है। और सब जब बड़ा असुर बनता है रावण जैसे, रावण जैसे, हिरण्यकश्यप जैसे, तो तभी भगवान बोलते हैं कि अभी इनको सर्जिकल ऑपरेशन करना होगा। कभी कभी क्या हो जाता है, बॉयल होता है ना, पहले छोटा होता है, अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं और बड़ा हो जाता है, और बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, डॉक्टर बोलते हैं अभी तुमको सर्जरी करना पड़ेगा। तो हिरण्यकश्यप का सर्जरी किया भगवान नरसिंह देव ने, ऐसे खोल दिया उनके पेट को, फाड़ दिया भगवान ने। इस तरह भगवान क्यों करते हैं ऐसा बताया जाता है। जब रामचंद्र भगवान ने अपने तीर चलाया रावण के छाती के ऊपर, तब उस तीर से रावण का पूरा शरीर, मन, बुद्धि सब कुछ शुद्ध हो गया। उससे उसमें जो भी पापमय कृतियां था, पाप कर्म फल थे, वो सब कुछ चूस लिया भगवान ने अपने एक तीर के द्वारा, ऐसे बताया जाता है। इस तरह प्रहलाद ने भी प्रार्थना की भगवान को, हे भगवान नरसिंहदेव, मुझे एक ही इच्छा है कि मेरे पिताजी को आप मुक्ति प्रदान करो और आप आपका आश्रय प्रदान करो, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ पाप किया उन्होंने अपने जीवन में। लेकिन भगवान ने बोला, ये तुम्हारे बोलने के पहले से मैंने निर्णय ले लिया है, तुम्हारा एक ही पिताजी नहीं, तुम्हारे 21 पीढ़ियों के लोग जो हैं उनका उद्धार हो चुका है ऑलरेडी, ऐसे भगवान ने बोला प्रहलाद को। तो भगवान असुरों को मारते हैं उनकी उद्धार करने के लिए। जिनको मारते हैं भगवान, वो असुर किधर जाते हैं वो लोग? तो उसके संबंध में दूसरा प्रश्न पूछा था आप इन्होंने परीक्षण सुखदेव गोस्वामी को। उन्होंने पूछा, ठीक है मैं मानता हूँ कि असुरों को भगवान भलाई करने के लिए ही मारते हैं वगैरह, लेकिन वो बोलते हैं कि इतना आश्चर्य की बात है कि शिशुपाल ने बहुत ईर्ष्याली व्यक्ति था, भगवान कृष्ण को निंदा करता था वो, उनको एक ऐसा शाप था उनको कि जब वो 100 बार निंदा करता है भगवान को तभी उनका मृत्यु आएगा, ऐसा उनका एक अभिशाप था उनका उनके जीवन में। तो ऐसे शिशुपाल को कैसे, जब भगवान राजसूय यज्ञ के समय भगवान ने जब शिशुपाल के सर को काटा, उस समय शिशुपाल के शरीर से निकला हुआ एक बहुत तेजोमय एक कांति निकला, जो आत्मा था वो जाकर कृष्ण के शरीर में लीन हुआ, ये कैसे हुआ? ऐसे पूछा युधिष्ठिर ने। वो तो इतना बड़ा पापी था, इतना उसने गलतियां किया है, भगवान को शाप दिया है, भगवान के बारे में निंदा किया है, ऐसे व्यक्ति को कैसे भगवान ऐसे एक स्थान दिया उसको? ऐसे वो पूछते हैं दूसरा प्रश्न। और उन्होंने ये भी पूछा कि वेण वेण नाम का एक राजा था, वो बड़ा क्रूर व्यक्ति था। वो जब बचपन में भी वो क्या करता था, बच्चों को मार डालता था। वो आसपास पड़ोस के घर में जाकर बच्चों को मारता था। वो बहुत क्रूर व्यक्ति था। वो बाद में होकर वो राजा बना। राजा बनने के बाद वो ब्राह्मणों को भी सताने लगा। वो बोला ब्राह्मणों को, हे ब्राह्मणों, आप सब यज्ञ पूजा वगैरह छोड़ दो और मेरा पूजा करो, मैं ही भगवान हूँ, ऐसे बोला उसने। और इस तरह बहुत तकलीफ दे रहा था वो जनसाधारण को भी। ऐसे वेण जो है वो भी क्रूर व्यक्ति था और शिशुपाल भी एक क्रूर व्यक्ति था। लेकिन शिशुपाल को कैसे उद्धार प्राप्त हुआ, उद्धार हो गया वो, लेकिन वो वेण को ऐसे गति प्राप्त नहीं हुआ, ये कारण क्या है, ऐसे पूछा उन्होंने। तो उसमें बताते हैं कि इसका कारण एक बड़ा कारण है। वो बताते हैं कि भगवान ये नहीं देखते थे कि कौन असुर है कौन भक्त है। जो भी व्यक्ति किसी भी तरह से भगवान का स्मरण करता है उसको भगवान उद्धार करते हैं। तो उन्होंने बोला जैसे एक कीड़ा होता है, आपने देखा होगा ना, कीड़ा वो क्या करता है, कीड़ा इसके अंदर रहता है, एक छिद्र के अंदर रहता है। लेकिन एक तितली जो होता है वो आकर वो कीड़ा को हमेशा डस कर चला जाता है। वो आपने देखा है, आता है और डसता है और चला जाता है, कुछ समय के बाद उड़ कर आता है, उसको वापस डसता है और चला जाता है। लेकिन एक कीड़ा क्या करता है, बार बार उसके बारे में सोचता रहता है, कब आएगा, कब मुझे डसेगा, कब मुझे बहुत दर्द होगा, इस तरह सोच कर वो डरता है। इस तरह बार बार अपने मन में उस तितली के बारे में, तितली बोलते हैं उसको, तितली नहीं कि तितली नहीं, क्या बोलते हैं उसको, तितली तो बड़ा सुंदर होता है, वो छोटा वाला है, वैस्प, या वैस्प बड़ी से, उसको क्या बोलते हैं, भ्रमर, भ्रमर बोलते हैं उसको, भ्रमर, हाँ, किसी को मालूम है उसका नाम, आप लोग सब लोग समझ गए क्या है ना, वो बस आप समझ गए, हम तितली तितली बोलते रहेंगे लेकिन आप समझ जाएंगे क्या है। तो वो डसने के कारण उसका स्मरण करता है, इसलिए बाद में क्या हो जाता है, वो कीड़ा भी, वो भी तितली जैसा बन जाता है, उसको भी पंखा मिल जाता है। इस तरह उन्होंने बोला, अक्षय गोस्वामी ने बोला कि अगर कोई कृष्ण का स्मरण करता है भय से भी, जैसे कंस ने भय के साथ स्मरण किया है ना, एक बार कंस ने अपने दो पत्नियों को आते हुए देखा, तुरंत वो चिल्लाने लगा, कृष्ण बलराम आ गए दोनों, ऐसे चलाया उसने। पत्नी ने बोला, कौन है कृष्ण बलराम, दोनों आपके पत्नी हैं, ऐसे बोला उन्होंने। तब ऐसे आईने में देखता था उसको, अपने शरीर पूरा दिखता था लेकिन गला गर्दन नहीं था, वो गला नहीं रहता था, ऐसे देखता था वो, डरता था वो, मर गया मैं, ऐसे वो चिल्लाता था वो। तो सब चीज जो होते थे वो दो दो दिखते थे उसको, उसके आंखों में ऐसे, ये सब अपशकुन था जिससे वो हमेशा कृष्ण को देखता था। हम कहीं भी मुड़कर देखो कृष्ण दिखते थे उसको, लेकिन कैसे, भय से। इस तरह शिशुपाल भी कृष्ण का स्मरण किया, कैसे, द्वेष भावना से ही उसने स्मरण किया। तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि तुम द्वेष से स्मरण करो, भय से स्मरण करो, प्रेम से स्मरण करो, लेकिन क्योंकि स्मरण करने वाला चीज जो है वो भगवान कृष्ण है, इसलिए उन लोगों का भी उद्धार हो गया, ऐसे बोला उन्होंने। जिस तरह ये कीड़ा स्मरण करता है उसका उदाहरण दिया उन्होंने। तो इस तरह शिशुपाल, हालांकि वो भगवान के शरीर में लीन हुआ, लेकिन उसको क्या पदवी प्राप्त हुआ, सालोक्य और सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुआ। उसका मतलब है भगवान के धाम में हमेशा रहना और भगवान के रूप जैसा, विष्णु के समान रूप उसको प्राप्त हुआ, विष्णु दूत का रूप उसको प्राप्त हुआ अंत में, ऐसे उन्होंने समझाया। इससे हम क्या सबक सीखते हैं, हम जितना स्मरण हम बढ़ाते हैं भगवान की, उतना हमारा शरीर भी दिव्य बन जाएगा। जैसे भगवान का शरीर है सच्चिदानंद है और हमारा शरीर भौतिक, लेकिन हम जितना भगवान का स्मरण करेंगे उतना भगवान का लीला का स्मरण, भगवान का नाम रूप गुण लीला का स्मरण से हमारा शरीर धीरे धीरे दिव्य बनता जाएगा और ये भौतिक आवरण जो है वो अपने आप निकल जाएगा, ये भौतिक आवरण, लेकिन हमारा दिव्य शरीर जो है। ऐसे तो वैकुंठ धाम में सब लोग विष्णु जैसे ही दिखते हैं देखने में, लेकिन उनको विष्णु दूत बोलते हैं, विष्णु जैसी शक्ति नहीं है उनके अंदर, लेकिन विष्णु दूत विष्णु जैसे ही दिखते हैं देखने में। ऐसे एक शरीर प्राप्त हो जाता है भगवान के भक्तों को। तो इस तरह के दो प्रश्न पूछते हैं इस अध्याय में पहले, और सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं कि भगवान जैसे भगवत गीता में बताते हैं ना, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, हे भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। हे अर्जुन, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सब जीवों को समानता से देखता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई जीव, क्योंकि वो देवता है इसलिए ज़्यादा प्रिय है, और कोई जीव असुर है इसलिए मैं द्वेष करता हूँ उनको, नहीं। मैं सब जीवों को मैं समानता से मैं देखता हूँ, सब जीव मेरे बच्चे जैसे हैं। लेकिन ये भजन्ति तो माम भक्तिया, लेकिन जो मेरे भक्ति भावना में मेरे से जुड़ते हैं, मेरे भक्त होते हैं, क्योंकि वो मुझे प्रेम करते हैं, मैं भी उस प्रेम का आदान प्रदान करता हूँ। हाँ, इस तरह भगवान बताते हैं, क्योंकि वो मुझे प्रेम करते हैं और मेरे निकट आते हैं, मैं कैसे उनको प्रेम नहीं दिखाऊँ। हाँ, इसलिए मैं उनका प्रेम का आदान प्रदान करता हूँ, भगवान ने बोला। इसको देखकर कभी कभी असुर सोचते हैं कि मैं पक्षपात करता हूँ। मैं पक्षपात नहीं करता हूँ, मैं असुरों को भी जो करता हूँ वो भी उनके भलाई के लिए ही है। इस तरह भगवान ने समझाया। तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि महाभारत में भगवान कृष्ण ने पांडवों को बहुत मदद किया और उनको गलत पथ में गलत चीज़ों को करने के लिए बोला भगवान ने। जैसे कर्ण को, कर्ण जब निकाल रहा था रथ के पहिए को, तभी भगवान कृष्ण ने बोला अर्जुन को, है अर्जुन मार डालो अभी कर्ण को। तभी कर्ण, अर्जुन ने सोचा कि कैसे मारो, लेकिन उन्होंने मारा उनको। उस समय कर्ण चिल्ला रहा था भगवान ये अर्जुन को, है अर्जुन तुम तो क्षत्रिय हो, क्षत्रिय को ऐसे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे क्षत्रिय जब निरायुध होता है उसको मारना नहीं चाहिए। अभी मैं निरायुध हूँ, जब तक मैं रथ में वापस चढ़ता नहीं तब तक तुमको मुझे मारना नहीं चाहिए। अगर तुम मारोगे तो तुम क्षत्रिय के स्तर से गिर जाओगे नीचे और सारे दुनिया तुम्हारा निंदा करेगा, ऐसे बोला कर्ण ने। लेकिन भगवान कृष्ण ने बोला कर्ण को, हे कर्ण तुम क्या धर्म की बात करते हो आज। तुम जरा सोचो, जब अभिमन्यु जो छोटा लड़का है उसको आप सात महारथी साथ में आकर आप लोगों ने मार डाला उस बच्चे को। लेकिन महारथी जब लड़ते हैं एक महारथी के साथ एक ही लड़ना होता है, 1-to-1 ऐसा लड़ना होता है। लेकिन कितने लोगों ने मारा अभिमन्यु को, 7 लोगों ने मारा। तभी तुम्हारा धर्म किधर चला गया, तभी भगवान ने पूछा। जब पंच पांडवों को निंदा किया गया तभी हे कर्ण तुमने बोला था द्रौपदी को सभा में लाओ और उसका वस्त्र हरण करो, ये सारा आइडिया किसने दिया, तुमने आइडिया दिया। हाँ, तुमको शर्म नहीं आता ऐसे किसी दूसरे पत्नी को, व्यक्ति की पत्नी को सभा में लेके आकर उसकी वस्त्र हरण करना, तभी तुम्हारा धर्म किधर चला गया उस समय। और तुमने ही बोला था दुर्योधन को कि सब पांडवों को भगाओ जंगल में 12 सालों के लिए, तुमने उसको प्रोत्साहन दिया था, तभी तुम्हारा धर्म किधर गया। तो भगवान ऐसे अनेक चीज़ों के बारे में पूछा कर्ण को। तो अनेक बार तुमने धर्म के नियमों को तोड़ा है और अभी क्योंकि तुम्हारा जान खतरे में है अभी तुम बोल रहे हो कि धर्म को पालन करो, आज तुम नहीं बचोगे, अभी कर्ण अर्जुन के हाथ में तुम जरूर मर जाओगे आज। इस तरह बोलकर भगवान ने बोला अर्जुन को, अर्जुन मारो अभी, छोड़ो नहीं इसको। तभी उन्होंने मारा। तो भगवान के हम समझ सकते हैं कि कैसे, अगर भगवान मारना चाहते थे कौरवों को एक सुदर्शन चक्र से सबको मार डाल सकते थे, उनका कुछ समस्या नहीं। असुरों को मारना भगवान के लिए बड़ी बात नहीं है, एक ही स्ट्रोक में सबको मार सकते थे। लेकिन हम लोगों को एक अच्छा सबक सिखाना चाहते हैं भगवान कि असुर कौन लोग हैं, सुर कौन लोग हैं, असुर का क्या स्वभाव होता है, असुरों नहीं तो महाभारत ही नहीं होता था, है ना। अगर कौरव बोलते हैं कि हम सहमत नहीं हैं पांडवों को 5 गांव देने के लिए हम तैयार नहीं है, तुरंत भगवान ने चक्र को बुलाया, मारो सब सैकड़ों कौरवों को मारो। अगर वो खुद मारते थे तो कुरुक्षेत्र युद्ध होता ही नहीं था, है ना, और भगवान कर भी सकते थे। लेकिन भगवान क्या नहीं, भगवान क्योंकि हमको सिखाना चाहते हैं भगवान पांडवों के बारे में, कौरवों के बारे में। तो हमें कभी भी सोचना नहीं चाहिए कि भगवान ने कुछ गलती कर दिया है। अगर गलती महसूस होता है तो हमारे आंखों में कैटरैक्ट है। व्हाट इज कैटरैक्ट मालूम आपको? अगर आपको कैटरैक्ट, क्या बोलते हैं हिंदी में, मोतियामितु, है ना, मोतिया बिंदु, ठीक है मोतिया बिंदु। जब आंख में मोतिया बिंदु होता है सब दो दो दिखते हैं। तो गलती की इधर क्या सब चीज दो दो है, नहीं, हमारे प्रॉब्लम समस्या इधर है आंखों में। इस तरह अगर भगवान में गलती दिखता है तो अच्छा है कि हम भक्तों से मिलकर पूछ ले क्यों हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमारे समझावट में कुछ गलती है। इस तरह परीक्षित को भी ये प्रश्न उठा मन में, क्यों इस तरह भगवान गलती करते हैं, क्यों असुरों की साथ नहीं देते हैं, असुरों को साथ देते हैं, क्यों ऐसे शिशुपाल इतना बड़ा पापी था उसको भगवान ने ले लिया अपने वैकुंठ में ही। हाँ, लेकिन वेण जो था वो राक्षस था उसको भगवान ने क्यों नहीं लिया, उसका कारण भी बताते हैं। कथमोपि न वेण स्यात् पंचानाम पुरुषम प्रति। ये वेण जो है हालांकि बड़ा क्रूर असुर था लेकिन भगवान का स्मरण कभी नहीं किया उसने, लेकिन कंस ने भगवान का स्मरण किया इसलिए उसको ऊंचा गति प्राप्त हुआ। कंस हो शिशुपाल हो जो भी, इससे हम क्या समझते हैं, अगर कोई ईमानदार भी है, नेक भी है, अच्छा आदमी है, लेकिन भगवान का स्मरण नहीं करता है, वो असुर से भी बुरा है वो। क्योंकि भगवान का स्मरण करने से ही हम भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर स्मरण करने से ही हम भगवत धाम लौट सकते हैं, दूसरा उपाय नहीं है। हमारे जीवन में बार बार भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसलिए हम संडे कार्यक्रम में आते हैं, साथ में बैठकर सुनते हैं भगवान के बारे में, लीलाओं का स्मरण करते हैं, श्रवण करते हैं, क्योंकि अपने जीवन में भगवान को एक प्रमुख व्यक्ति बनाना चाहिए। हमको पहले फर्स्ट वी हैव टू बी डिवोटीज, देन वी हैव टू थिंक ऑफ द प्रोफेशन। पहले हमें सोचना चाहिए कि मैं भक्त हूँ, उसको पहले सोचना चाहिए ऐसे। क्योंकि भगवान के स्मरण के बिना जो वेण राजा उसको ऊंचा गति प्राप्त नहीं हुआ, हालांकि शिशुपाल कंस वगैरह ये सब लोग असुर थे, लेकिन भगवान का स्मरण करते करते हुए उनको ऊंचा गति प्राप्त हुआ। लेकिन ये अनुकूल भक्ति नहीं है। अनुकूल भक्ति का मतलब प्रेम से स्मरण करना चाहिए हमें भगवान को, जैसे यशोदा मई ने किया, गोपियों ने किया, अर्जुन ने किया, गोप बालकों ने किया, गायों ने किया वृंदावन में। इस तरह प्रेम पूर्वक प्रेम भावना के साथ हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो इस तरह दोनों प्रश्नों को अच्छी तरह जवाब देते हैं, इस तरह ये पहला अध्याय पूरा होता है। और दूसरा अध्याय आप अगले प्रवचन में आप सुनेंगे, हिरण्यकशिपु किंग ऑफ डिमंस। तो उसके संबंध में आप गुरुवार शाम को अगले प्रवचन है। तो हम एक कंटिन्यूस सीरीज में जाने वाले हैं, एक एक अध्याय अलग अलग भक्त। शिवचंद प्रभु, द नेक्स्ट लेक्चर इज ऑन थर्सडे इवनिंग, करेक्ट? या सो थर्सडे इवनिंग, फ्राइडे मॉर्निंग एंड फ्राइडे इवनिंग, राइट? कुल मिलाकर 4 लेक्चर हैं। अगर आप लोग अटेंड करेंगे तो आपको इसका कंटिन्यूएशन सुनने को मिलेगा। आप लोग गुरुवार शाम को आइए बड़े संख्या में, और आगे का लीला और बहुत मधुर रहेगा इससे भी और ज़्यादा, क्योंकि हिरण्यकशिपु आ जाएगा सीन में, और क्या क्या किया उसने आपको पता चलेगा, और हिरण्यकशिपु की तपस्या आपको पता चलेगा। उसके बाद प्रहलाद की दिव्य कृष्ण भक्ति के बारे में प्रवचन होगा, उसके बारे में प्रहलाद ने क्या क्या शिक्षण दिया आपको पता चलेगा उसके बारे में, कैसे भगवान नरसिंहदेव नरसिंह लीला से क्या क्या सबक हम सीखते हैं, वो सब भक्त लोग आगे बोलेंगे। तो हर साल हम किसी भी तरह का हम लेक्चर दे देते, लेकिन इस बार हमने सोचा कि एक कंटिन्यूएशन